हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सागणलघुसावधान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं गणजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणासिन्धो कांचन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी सुते। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम 10:2:10 आवृत्ति कीजिए मूल श्लोक का। अर्चयिष्यन्ति मनुष्यः त्वां सर्वकाम वर ईश्वरीं सर्वकामपरेश्वरी धूप उपहार बलिभिः धूपोपहार बलिभिः सर्व काम वर प्रदाम अर्चयिष्यन्ति मनुष्या स्वाम सर्वकाम परेश्वरीम धूपोपहार बलिभिः सर्वकाम वर प्रदाम अर्चिष्यन्ति मनुष्या स्वाम सर्वकाम परेश्वरीम धूपोपहार बलिभिः सर्वकाम वर प्रदाम अर्चिष्यन्ति मनुष्या स्वाम सर्वकाम वरेश्वरीम धूपोपहार बलिभिः सर्वकाम वर प्रदाम अर्चिष्यन्ति मनुष्या स्वाम सर्वकाम वरेश्वरीम धूपोपहार बलिभिः सर्वकाम वर प्रदाम अर्चिष्यन्ति मनुष्या स्वाम सर्वकाम वरेश्वरीम अर्चिष्यन्ति मनुष्या स्वाम सर्वकाम वरेश्वरी धूपोपहार बलिष्यन्ति मनुष्या स्वाम धूपोपहार बलिः अर्चिष्यन्ति मनुष्या स्वाम सर्वकाम वरेश्वरि धूपोपहार बलिः सर्वकाम वरप्रदाम सर्वकाम वरेश्वरीम धूपोपहार बलिः सर्वकाम मातृवर्ग धूपोपहार बलिः मातृवर्ग अर्चिष्यन्ति मनुष्या स्वाम सर्वकाम वरेश्वरीम धूपोपहार बलिः सर्वकाम वरेश्वरीम अर्चिष्यन्ति मनुष्या स्वाम सर्वकाम वरेश्वरीम धूपोपहार बलिः सर्वकाम वर प्रदाम अर्चिष्यन्ति मनुष्या स्वाम सर्वकाम वरेश्वरीम धूपोपहार बलिः अर्चिष्यन्ति, पूजा करेंगे मनुष्यः, मानव समाज सर्व काम परेश्वरीम, सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होने से धूप सुगंधित द्रव्य से उपहार भेंट से बलि भी यज्ञ द्वारा विविध प्रकार की पूजा से सर्व काम सारी भौतिक इच्छाओं में बर आशीर्वाद प्रदान प्रदान कर सकने वाले। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी। सामान्य लोग पशुओं की बलि के विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में अध्याय 7 श्लोक संख्या 20 कहा गया है, कामैः तैर तैर हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके हैं वे देवताओं की शरण में आते हैं। अतः मनुष्य शब्द सामान्य व्यक्ति के लिए आया है जो जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति उच्च परिवार में जन्म लेकर भौतिक आनंद उठाना चाहता है, जहां शिक्षा सौंदर्य तथा प्रचुर ऐश्वर्य भोगा जा सकता है, जो इस भौतिक संसार में वांछनीय है। जीवन के असली लक्ष्य को भूलने वाला व्यक्ति माया शक्ति अर्थात देवी दुर्गा की पूजा विविध कार्यों के लिए विभिन्न स्थानों और नामों से कर सकता है। जिस तरह कृष्ण की पूजा हेतु भारत में अनेक पवित्र स्थान है, उसी तरह दुर्गा देवी या जसोदा की पुत्री के रूप में उत्पन्न माया देवी की पूजा के भी अनेक पवित्र स्थल हैं। कंस को धोखा देने के बाद माया देवी सामान्य लोगों से नियमित पूजा कराने के लिए अनेक स्थानों में विशेषतया विंध्याचल में विकीर्ण हो गई। मनुष्य को तो वास्तव में आत्म तत्व अर्थात आत्मा का सत्य और परमात्मा को जानने में रुचि रखनी चाहिए। जो लोग आत्म तत्व में रुचि रखते हैं वे भगवान की पूजा करते हैं। जस्मिन विज्ञाते सर्वम एव विज्ञातुम भवति। फिर भी जैसा कि इस अध्याय के अगले श्लोक में बताया गया है, जो लोग आत्म तत्व को नहीं समझते अपश्यताम आत्म तत्वम, वे योग माया के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत 2.1.2 में कहा गया है, श्रोतव्यादि निराजेन्द्र निर्णम शांति सहस्रश अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेशु गृहमेधिना। हे राजन, जो लोग भौतिक संसार में फंसे हैं वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे होने के कारण मानव समाज में अनेक प्रकार के नियमों को सुनते रहते हैं। जो लोग इस भौतिक संसार में रहना चाहते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति में रुचि नहीं रखते, उनके पास करने के लिए अनेक कार्य होते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक मुक्ति में रुचि रखता है उसका एकमात्र कर्तव्य होता है कि वह पूरी तरह कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले। सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम, ऐसा व्यक्ति भौतिक भोग में रुचि नहीं रखता। बंधुओं, दशम स्कंद की कथा चल रही है। भगवान के अवतार का प्रकरण है। आप सब लोग रोज रोज तो भागवत में नहीं आने का लाभ लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा पीछे से दशम स्कंद में महाराज परीक्षित का प्रश्न है, विस्तार से नवम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन श्रवण कराया। तो एक चलती हुई कथा को महाराज परीक्षित ने प्रश्न के द्वारा उसे मोड़ दिया और कहा कि महाराज, अब मैं भगवान कृष्ण की दिव्य जन्म और कर्म की लीला श्रवण करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे प्रश्न किए महाराज परीक्षित ने। उसमें पहला प्रश्न था श्री बलराम जी के अवतार के प्रसंग में, रोहिण्या तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि आपने श्री बलराम जी का नाम देवकी के पुत्र के रूप में भी वर्णन किया और रोहिणी के भी पुत्र के रूप में वर्णन किया, तो महाराज आप यह स्पष्ट कीजिए कि बिना शरीर परिवर्तन किए एक बालक दो माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है? कुतः देहांतम बिना, यह संभव नहीं है कि बिना शरीर छोड़े एक ही बालक, एक जीवात्मा दो माताओं का पुत्र बने। तो वंश परंपरा के क्रम में सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया कि श्री बलराम जी एक ही शरीर में श्री देवकी जी के भी पुत्र हैं सातवें पुत्र के रूप में और बाद में श्री रोहिणी जी के भी पुत्र हैं। तो देवक्या गर्भ संबंध कुतः देहांतरम बिना, यह कैसे संभव है? महाराज जी इसकी व्याख्या में करते हैं कि आज चाहे भले भी कितना डेवलप टेक्नोलॉजी हो, परंतु इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकता कि एक बच्चे को दो माताओं के गर्भ में स्थापित करे। या तो बच्चा मर जाएगा और नहीं तो मां समाप्त हो जाएगी। परंतु भगवान की जो दैवी शक्ति है, जिसको देवी कहते हैं, अघट घटना पटीयसी शक्तिमती, जिनको शक्ति कहते हैं, देवी कहते हैं। देवी का अर्थ है, एक दिन मैंने उसकी व्याख्या की थी, देवी माने जो देव की है, देव की नहीं, देव की, भगवान की जो है, ऐसे जो देवी है वह अघट घटना में भी पटीयसी है। अघट का अर्थ होता है जो घटना नहीं घटने लायक है उसको भी घटा सकती है, घटाने में जो पटीयसी है बिल्कुल एक्सपर्ट है उसका नाम देवी है। अघट घटना पटीयसी देवी का एक नाम। संसार की सृष्टि में भी आप देखते हैं इतने विचित्र विचित्र सृष्टि करना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ये संसार भी जो विचित्र सृष्टि है ये दैवी सृष्टि है। और ऐसी देवी को भगवान ने आदेश दिया, छह गर्भ को कंस ने मार डाला और सातवें में श्री बलराम जी आए। उसी प्रश्न का, महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग में दे रहे हैं। कैसे देहांतर हुआ, बिना देहांतर एक ही शरीर से दो माताओं के पुत्र कैसे बने। बंधुओं, जैसे भगवान गीता में कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, उसी तरह से श्री बलराम जी भी कृष्ण ही है। कृष्ण और बलराम दोनों में कोई भेद नहीं है, एक सांवले हैं और एक गौर स्वरूप। ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। गौर वर्ण है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा।
भक्तों को इसीलिए प्रभु कहा जाता है, प्रभु माने सर्वसमर्थ। सर्वसमर्थ होकर निद्रा के बस में असमर्थ मत हो जाइए। प्रभु माने भगवान, जो भजन करने लगता है उसको इतनी बड़ी पदवी मिलती है, इतनी बड़ी प्रभु, और उसी में भी जी लगाते हैं, है ना, आप प्रभु जी हैं। प्रभु का अर्थ होता है समर्थ, कैपेबल। तो किस बात में समर्थ हैं आप, संसार की चर्चा छोड़कर भगवान का नाम लेंगे, दुनिया की बात छोड़कर हरि कथा श्रवण करेंगे, संसार का चिंतन छोड़ करके भगवत चरणारविंद का चिंतन करेंगे, इसके लिए आप समर्थ हैं। बहुत बड़ा पद है ये भक्त लिए, यहां तक कि महाराज से भी बड़ा पद है ये प्रभु। महाराज माने क्या होता है, हम लोगों के दिमाग में है कि महाराज जी माने बहुत बड़ा पद है। महाराज मतलब बहुत बड़ा राजा। और प्रभु माने आप भगवान के स्वरूप प्रभु। भ्रांत धारणा है, किसी महाराज को प्रभु कह दीजिए तो वो नाराज हो जाएंगे, मैं महाराज जी हूं। तो महाराज से भी बड़ा पद है ये प्रभु का। प्रभु भगवान को कहते हैं जो सर्व समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है, उसको प्रभु कहते हैं। कथा में क्या सामर्थ्य दिखाना है, पहला सामर्थ्य है कि निद्रा से पर विजय प्राप्त करना है, और दूसरा सामर्थ्य है कि मन को कथा के शब्दों से अलग नहीं जाने देना है, तब तो आप ठीक ठीक प्रभु हो। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
इंद्रियों को आप बस में रखो, ये प्रभु का काम है। इंद्रियों का स्वभाव है, इसका प्रभाव है कि विषयों की तरफ, अज्ञान की तरफ, निद्रा की तरफ, भगवत विमुख पदार्थों की तरफ बड़ी आसानी से प्रवाहित होती है। प्रवाहित करना नहीं पड़ता है क्योंकि अनंत जन्मों का स्वभाव बना है इसका। जिस शरीर में गया वहाँ खाना पीना सोना संसारिक विषयों में, तो वह प्रवाह जो होता है इस शरीर में भी होता है। इसलिए जो भजन करता है उसको प्रभु बनना है, क्योंकि भगवान की शक्ति संपन्न होकर के तब वो भगवान का भजन कर सकता है। देवम भूत्वा देवम यजेत, देव बन करके देव की आराधना कर सकता है। प्रभुपाद जी इसमें मनुष्या शब्द का बहुत सुंदर अर्थ करते हैं। बोले मनुष्या उनके लिए दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक जो संसार की कामना से ग्रस्त है, ऐसे काम ग्रस्त लोग आपकी पूजा करेंगे, लेकिन जो राम ग्रस्त हो चुके हैं, श्याम ग्रस्त हो चुके हैं, भगवान ने जिनके जीवन को पकड़ लिया है, जिनके प्राणों को, जिनके मन को पकड़ा है, वो लोग आपकी पूजा नहीं करेंगे। तो कभी कभी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसके टीका में लिखते हैं, कभी कभी वैष्णव भी पूजा करते हैं। तो आपको ले चले पवित्र श्रीधाम वृंदावन जमुना जी के तट पर, जहां पर 6 वर्ष की बच्चियां उनके जीवन में, उनके हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा जब प्रकट हुई तो किसकी पूजा किया? देवी की पूजा किया। पूजा तो देवी का किया, परंतु उस पूजा का मंत्र क्या था? देवी का एक भी मंत्र उस पूजा में नहीं था। संबोधन था, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, ये सब देवी जी के चरणों में काकू प्रार्थना इसको कहते हैं, विनीत प्रार्थना कर रही हैं 6 वर्ष की बच्चियां। लेकिन प्रार्थना का सार क्या है कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और देवी जी की बालुका मई प्रतिमा बनाती है, प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, और इन बच्चियों का उम्र कितना है? 6 वर्ष की बच्चियां, 6 वर्ष और उसके आसपास, क्योंकि इसके पूर्व में सुखदेव गोस्वामी ने कथा कहा कि किस तरह से बड़ी बड़ी गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, क्योंकि ब्रज में जो है, ब्रज क्या है? बोले कृष्ण प्रेम का ही एक मूर्तिमान स्थान है, जहां सब लोग भगवान के प्रेम से, कब से प्रेम होता है? चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जब जन्म लेते हैं तो प्रेम, कृष्ण प्रेम साथ में ही जन्म लेता है। ब्रजवासी गणे कृष्णे सहज प्रीति, सहज का अर्थ होता है सह माने साथ में, जन्म ज माने जन्म ले, जन्म हुआ उसके साथ ही कृष्ण प्रेम का जन्म हुआ उनके जीवन में। और कृष्ण का भी सहज प्रेम है उन ब्रजवासियों के प्रति। रासलीला में तो भगवान कहते हैं कि मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान पर, अपने ब्रजवासियों को परित्याग नहीं करूंगा, कभी छोड़ नहीं सकता। इन्हें कभू न बिसारी हूं मुहे नंद बाबा की आन। मैं पिता की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं ब्रजवासियों को कभी नहीं भूल सकता हूं। तो 6 वर्ष की बच्चियों के भीतर भी कृष्ण से कितना प्रेम है और कृष्ण प्राप्ति की कितनी उत्कट लालसा है, उस लालसा को दिखाने के लिए, बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। 6 वर्ष की बच्चियों को भी जब भगवत प्राप्ति करने की लालसा हुई तो महाराज उन बच्चियों ने देवी जी की पूजा की। और देवी जी की पूजा किया बहुत बहुत सामग्रियों से, पुष्प से, दुर्वा से, हल्दी से, अक्षत चंदन और विशेष रूप से देवी पूजा के लिए एक पुष्प होता है जवा कुसुम, क्या बोलते हैं इधर, लाल लाल होता है, हाँ जवा कुसुम ही बोलते हैं ना, भोजपुरी में उसको ओड़हुल बोलते हैं। वो पुष्प भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित नहीं किया जाता है। तो दिन भर बच्चियां उन पुष्पों को, फलों को, फूलों को, पूजा के उपहारों को चुनने में रहती थी और प्रातः काल होते ही एक दूसरे को पुकार करके और श्री यमुना जी के तट पर पधारते। बीच में बहुत सुंदर मधुर कीर्तन, कृष्ण लीला का कीर्तन गाते हुए 6 वर्ष की बच्चियां इतने टेंडर एज में, कम उम्र में भगवान को प्राप्त करना है और कैसे प्राप्त करना है। बोले नंद गोप सुतम, नंद बाबा जो गोप हैं उनके पुत्र को हमारा पति बना दीजिए। पति मे कुरुते, मैं पतिम कुरुता, मेरा पति कर दीजिए। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या श्लोक की है। उनके मन में इतनी उत्कंठा है, मानो देवी जी प्रश्न करें मैं कैसे बना दूं, बिना तुम्हारे माता पिता के इच्छा से, बिना उनको जानकारी दिए कैसे तुम्हारा पति बना दूं कृष्ण को। तब कहती हैं कि माता पिता को बताने में और जनाने में तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले वो उम्र देखेंगे कि अभी विवाह योग्य हुई कि नहीं हुई। इतनी लंबी प्रतीक्षा वेट बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसलिए आप आज ही और अभी, हम आपका व्रत कर रही हैं, तो आज और अभी कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। उस प्रसंग में एक बात आती है कि बहुत सारे देवी थे, देवता थे, एक प्रकार के देवता थे जिनके द्वारा वो मांग सकती थी। जैसे भागवत में लिखा है कि बहुत सुंदर पति चाहिए, उसे कामदेव की आराधना करनी चाहिए, धन चाहिए तो लक्ष्मी की आराधना, विद्या चाहिए तो सरस्वती की आराधना। तो ये बच्चियां दूसरे देवताओं की और देवी की पूजा क्यों नहीं, देवी पूजा क्यों स्वीकार किया है? क्योंकि देवी का एक स्वरूप है, उनको क्या कहते हैं, मां, क्या कहते हैं। बोले संसार में बहुत लोग पुत्रियों के बच्चियों का सुकामना करते हैं, परंतु बच्चियों के विषय में माँ जितनी चिंतित रहती है उतने पिता और भाई भी चिंतित। हमारे बेटी का वर कैसा मिलेगा, पति कैसा मिलेगा, ससुराल कैसा मिलेगा, सास कैसी मिलेगी, घर कैसा मिलेगा, इतना चिंतित रहती है और इतनी शुभ कामना देती है। इसलिए संसार में हरीश्वरी जी कहते हैं कि संसार में एक पुत्री को देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, परंतु पुत्री के शुभ कामना की इच्छा जितनी मां करती है उतना संसार में और कोई नहीं करता है। भव्य प्रदा ही बहवो, वो कहते हैं बहुत लोग बहुत बहुत देते हैं, भाई देता है, पिता देता है, चाचा देते हैं, संबंधी देते हैं, परंतु जितनी शुभकामना माँ देती है चिंतित रहती है, बच्ची के का कल्याण कैसे होगा, पुत्री का कल्याण कैसे होगा, जितनी चिंता माँ को रहती है उतनी चिंता और किसी को नहीं होती। इसलिए बच्चियों ने विचार किया कि इसलिए क्यों ना भगवान को प्राप्त करना है तो माँ की शरण में जाया जाए। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर अर्चयिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम, मनुष्यों की दो कोटि किए हैं, दो प्रकार की श्रेणी किए हैं। एक तो ऐसे मनुष्य होंगे जो संसार की कामना करेंगे, ऐसे तो बहुत कम मनुष्य होंगे जो भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, भगवान की प्राप्ति के लिए आराधना करेंगे। लेकिन वहां पर हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए वैष्णव भी, चाहे किसी भी देवी का या देवता का आश्रय ग्रहण करे, परंतु उसका फल यदि कृष्ण प्राप्ति मांगे तो उस पूजा में कोई भी दोष नहीं। ये गोपी जनों ने स्पष्ट कर दिया कि चाहे किसी की पूजा कीजिए, परंतु फल मांगना चाहिए कि नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरुता। आप नंद वास के लाडले पुत्र श्री कृष्ण को मेरा पति कर दो, बनाओ। तो जिसके जीवन में कृष्ण प्राप्ति ही लक्ष्य है उसको कहते हैं कि आत्म तत्व को देख रहा है, वो ये बात समझ रहा है कि हमारा मुख्य संबंध केवल कृष्ण से है। और दूसरे तरफ एक श्रेणी के ऐसे व्यक्ति हैं जो अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्म तत्व को नहीं देख रहे हैं, वो केवल मनः तत्व और शरीर तत्व में फंसे। उनको इंद्रियों का भोग चाहिए, विषय चाहिए। तो कल आपने सुना, जो गए होंगे भक्त, महाराज जी ने बहुत सुंदर बोले, इतना सुंदर साज प्राप्त करके भी, भारत जैसी सुंदर भूमि, मनुष्य जैसा सुंदर शरीर, अच्छे कुल में जन्म, जहां भगवान को प्राप्त करने का संस्कार प्राप्त होता है, सुंदर शरीर, स्वस्थ मन, इतना के बाद भी यदि आत्म तत्व से प्रेम नहीं है, भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहता है, तो वह व्यक्ति कैसा है? जैसे किसी को सोने का हल मिल जाए और उसमें काम धोनु को जोत करके और विष का बीज बोए, ऐसे व्यक्ति को गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, वो संसार के भोग को प्राप्त करने के लिए अन्य देवताओं की शरण में जाता है। बड़ी विचित्र बात है, ये जितने भी देवता हैं ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं, और भगवान ने सबको देने के लिए अलग अलग विभाग बनाया है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि जिनका हृदय ज्ञान, जिनके ज्ञान का अपहरण हो चुका है, हर लिया गया है, जिनमें ज्ञान नहीं है, वो लोग मुझे छोड़ करके अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। काम ही किसके द्वारा अपहरण हुआ है? बोले कामनाओं के द्वारा। कामनाओं के द्वारा जिनकी बुद्धि समाप्त हो गई है, कामई तई तई हृत, उन कामनाओं के द्वारा व्यक्ति कितनी कामना करता है, जो संसार में है, अज्ञान में है, उसको संसार में केवल 5 चीज चाहिए। सारा जितना भी संसार की सामग्री है बंधुओं, वो केवल 5 चीज प्रदान करती है, 5 तन्मात्रा प्रदान करती है। और 5ों में कौन कौन है? एक तो मधुर शब्द, ये एक विषय है। मधुर शब्द को सुनाने के लिए हमारे पास संसार में बहुत साधन है, उसमें टेलीविजन है, टेप रिकॉर्डर है। और सबसे मधुर शब्द किसका लगता है? दुनिया में सबसे मधुर शब्द, प्रवचन से भी मधुर, भगवान गीता में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं। परंतु इन सबसे मधुर जो एक गृहस्थ जीवन में लगता है वो क्या है? भगवान शिव ने से पूछा गया, प्रभु इस संसार में सबसे मधुर क्या है? तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, संसार का सबसे मधुर यदि शब्द है तो वो अपने पुत्र की वाणी है। कान खुजलाते हुए पीठ पर चढ़ करके कहे कि पापा, ये जितना गृहस्थों को मधुर लगेगा उतना प्रवचन भी मधुर नहीं लगेगा। अनुभव है ना आप सबको, आप सब प्राय ब्रह्मचारियों को तो इसका अनुभव नहीं होगा, परंतु गृहस्थों को है? और गोपा जी लिखते हैं ब्रोकन लैंग्वेज में, भाषा भी ठीक नहीं है, शब्द रस अलंकार की दृष्टि से कोई सरस भाषा नहीं है, फिर भी वो इतना अच्छा लगता है। भगवान शिव कहते हैं सुत वचनम, भगवान शिव से पूछा गया उससे मधुर क्या है, तब वही कहते हैं कि सुत वचनम। बोले सबसे मधुर क्या लगता है संसारी जीवों को? बोले अपने पुत्र की वाणी, उससे मधुर और कुछ नहीं। ये शब्द सुनना एक विषय है, जीव का अपना स्वरूपगत धर्म है, आनंद है कि वह भगवान की और भक्तों की लीला कथा का श्रवण करे। परंतु जब उसका जीवन विकृत हो जाता है, दूषित हो जाता है, प्रदूषण युक्त होता है, तब वह संसार के शब्दों को श्रवण करना, अनेक प्रकार की कामना होती है। दूसरा विषय क्या है? बोले देखना चाहता है संसार के रूप, और कुछ टेस्ट लेना चाहता है स्वाद, कुछ सूंघना चाहता है, कुछ स्पर्श करना चाहता है। ये दुनिया का जितना भी विश्व ब्रह्मांड में जितना भी मार्केट है, ये केवल 5 लक्ष्य को पूरा करने के लिए इतने बाजार और इतने दुकान, छठा और कोई लक्ष्य नहीं। और इन्हीं 5 वस्तुओं को पूरा करने के लिए जहां पर उपलब्ध सामग्री हो उसको मार्केट कहते हैं। 5 के अलावा और कोई भी छठी कामना नहीं है। खूब कोमल स्पर्श प्राप्त हो जाए, मधुर शब्द कान में आ जाए, सुंदर रूप मिल जाए, सुंदर खाने के लिए स्वाद मिल जाए, और सूंघने के लिए सुगंधित वस्तु मिल जाए, इसी में इसी 5 को प्राप्त करने की कामना जिसके अंदर है, तो बंधुओं उसके लिए भगवान ये देवी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि इन 5 चीजों को प्राप्त करने के लिए मनुष्या, जो मनुष्य हैं वो त्वाम अर्चयिष्यन्ति, 5 की कामना करेंगे और 5 को पूरा करने के लिए सर्व काम सब प्रकार के कामना और सभी प्रकार के कामनाओं का लक्ष्य 5, पूरे जीवन भर इसको प्राप्त करना और लेकर भोगने की इच्छा होती है, लेकिन इन 5ों में कोई भी तृप्त नहीं होता है। महाराज जी कहते हैं, किसी बूढ़े से पूछिए जिसकी आयु 100 वर्ष हो गई, जीवन भर भोग लिया हो, तो क्या उसकी एक इच्छा भी, एक इंद्रिया भी संतुष्ट हुई? कहा जाए कि आपने जीवन भर धन भी था, वस्तुएं भी थी, पुत्र पौत्र धन धान्यादिक से संपन्न है, तो क्या आपकी एक इंद्रिया भी आज तक संतुष्ट हुई? आंख संतुष्ट हुआ, जीभ संतुष्ट हुआ, कान संतुष्ट, सबकी बात छोड़ दीजिए, एक भी खुश हुआ क्या? हम जिसको खुश करने के लिए जीवन भर प्रयास किए, उसमें से एक भी प्रसन्न हुआ? उत्तर क्या मिलेगा? नहीं हुआ। जीवन भर पूरा सुंदर जीवन की आहुति देने के बाद भी एक इंद्रिया प्रसन्न नहीं होगी, तब किसको प्रसन्न करना है? तब किसकी अर्चना करनी है? बोले, जो बिल्कुल आसानी से नाम लेते ही प्रसन्न हो जाए, ऐसे प्रभु को प्रसन्न करना ही समझदारी है, बुद्धिमानी। और वो प्रभु कौन है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। बोले महाराज, ये इंद्रियां प्रसन्न होने वाली नहीं है, परंतु फिर भी जो अज्ञ जीव है, भगवान से अलग होकर के जो सुखी होना चाहता है, तो यह कामना, सुखी होने की जो कामना है, वो कौन देता है? भगवान आशीर्वाद दे रहे देवी को। अर्चयिष्यन्ति तो वर्तमान काल में है, परंतु हमारे सभी आचार्य अर्थ करते हैं कि हे देवी, इसके पहले तो तुम्हारी कम पूजा होती थी, परंतु जब तुम हमारी सेवा करोगी, जो मैं आदेश दे रहा हूं, क्या आदेश दिया? योग माया समादिशत। योग माया को भगवान ने सम्यक रूप से आदिशत आदेश दिया। आदेश कौन दे सकता है? जो स्वामी है, जो मालिक है, वो आदेश दे सकता है। और भगवान ने आदेश दिया, गच्छ देवी, जाओ जाओ, ये काम करो। आदेश कौन दे रहा है? बोले, परम पुरुष भगवान आदेश दे रहे हैं, अपनी शक्ति को, अपनी सेविका को, अपनी नौकरानी को आदेश दे रहे हैं, देवी तुम जाओ और इस तरह से ब्रज में जा करके देवकी के गर्भ में जो 7वां पुत्र है, वो मेरा ही स्वरूप है, उसको निकालो, और निकाल करके रोहिण्याम उदरे सन्निवेशय, रोहिणी के गर्भ में तुम रखो। महाराज, भगवान इतने घबरा के हो गए, 7वां गर्भ, 6 बच्चों को मार दिया, और भगवान 7वें गर्भ को निकाल क्यों रहे? देवी जी को आदेश दिया, सन्निकृष्य, बहुत आदर के साथ, प्रेम के साथ, सावधानी के साथ उनको निकालना उस गर्भ से, क्योंकि वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो भी हमारे ही स्वरूप है, वो तुम्हारे स्वामी है, और मैं और श्री बलराम जी एक ही हैं, इसलिए आदर के साथ निकालना और सावधानी के साथ निकालना, और कोई भी कष्ट न देवकी को हो, न संकर्षण को हो, न रोहिणी को हो, ऐसा निवेश करना। सन्निवेशय। और बंधु, ठीक बात है कि ऐसे तो मैं सुना था कि 5 महीना तक श्री बलराम जी देवकी के गर्भ में रहे और 5 महीने का बच्चा किसी माँ के गर्भ से निकल जाए और माँ को पता न लगे और 5 महीने का बच्चा किसी दूसरे माँ के गर्भ में स्थापित किया जाए और उस माँ को भी पता नहीं लगे, इस प्रकार के अद्भुत शक्ति संपन्न कार्य श्री देवी जी ने किया। इतना सुंदर कार्य आप सोचिए, भगवान के आदेश से किया और भगवान ने यह, महाराज जी कहते हैं जैसे सालों भर पगार तो दिया जाता है, पेमेंट तो मालिक करता है, परंतु दिवाली पर क्या देता है, बोनस देता है। और वो बोनस देने का लक्ष्य यही होता है कि आगे उत्साह से ये और काम करेगा, ठीक है कि नहीं। तो भगवान पहले भी पूजा तो होती थी देवी की, परंतु भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जब इस तरह से तुम सेवा करोगी, 7वें गर्भ को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करोगी। एक आचार्य कहते हैं भगवान क्यों स्थापित कराना चाहते हैं, कहते हैं कि 6 बच्चों को मार डाला, कहीं 7वें श्री बलराम जी को भी मार दे तो क्या होगा। बोले महाराज हरे कृष्ण बलराम जी को वो मार नहीं सकता था, बल्कि कंस जैसे ही श्री बलराम जी का स्पर्श करता उसी समय कंस मर जाता, क्योंकि भगवान के स्पर्श से असुर जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार, सूर्य है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। उसी तरह से जैसे ही ये कंस श्री बलराम जी का स्पर्श करता उसी समय वो समाप्त हो जाता। और कंस को मरना किसके हाथ से है, अस्यास्वाम अष्टमो गर्भः हंतायाम बहसे बुध आकाशवाणी, और पहले से निर्धारित है कि 8वां पुत्र मारेगा और कहीं 6 बच्चों की तरह इसको भी सामान्य बालक समझ करके और श्री बलराम जी का स्पर्श किया तो ये मर जाएगा। और फिर देवताओं की जो आकाशवाणी है और 8वें गर्भ से मरने की बात है, ये सब की सब क्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा देवताओं के वाक्य को और इसके तो जो इसकी जो मृत्यु है मेरे द्वारा लिखी हुई है, तो कहीं श्री बलराम जी न मार दें। इसलिए भगवान ने कहा गच्छ देवी, क्या करो, जाओ जाओ ब्रज में जाओ और मेरे ही अंश श्री बलराम जी हैं, मेरे ही धाम है, अनंत है, सहस्त्र सिरसा शेष है, भगवान भी है और भक्त भी है। एक 1000 मुख है श्री बलराम जी का, इसको शेष कहते हैं, और सब तरह से भगवान के सैया के रूप में, आसन के रूप में, भगवान के पाद पीठ के रूप में, आप सुने हैं ना भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं, ये शेष सैया कौन है, श्री बलराम जी हैं। एक स्वरूप से भगवान का विस्तर बन करके भगवान को सुख पहुंचाते हैं, ऐसे श्री बलराम जी को गर्भ स्थानांतरित करने के लिए भगवान ने योग माया को आदेश दिया, क्योंकि सातवें गर्भ से मृत्यु है नहीं और सातवें गर्भ में मैं ही हूं, कण स्पर्श नहीं कर सकता है। ये तो मरीचि के 6 पुत्र हैं, श्राप वर्ष वो पुत्र बने हैं और मामा के हाथ से मृत्यु है, इसलिए 6 को मार दिया और सातवां जो बालक है वो सामान्य बालक नहीं है। इसलिए श्री बलराम जी जब गर्भ में आए हैं तो देवकी के लिए सुखदेव को सुन कहते हैं, हर्ष शोक विवर्धनम। सर्वप्रथम बहुत बड़ा हर्ष हुआ, आप विचार करो, 6 बच्चे जिसके मार दिए गए जिस माँ के, और स्वयं पति के साथ कारागार में है, एक दुष्ट के अधीन है, परंतु फिर भी सातवां गर्भ आए वह माँ प्रसन्न हो जाए। ये भगवान का अपना स्वभाव है कि चाहे कितना भी दुख हो, कष्ट हो, संकट हो, परंतु भगवान जहाँ आविर्भूत होते हैं वहां पर आनंद ही आनंद हो जाता है। तो ऐसे 6 बच्चों को मरने के बाद भी देवकी के गर्भ में, जब सातवें गर्भ में श्री बलराम जी है, तो देवकी माता देवकी को परम हर्ष हुआ और भगवान के उपस्थिति के कारण हर्ष हुआ। और बंधु श्री बलराम जी इसलिए भी आए हैं क्योंकि ये सेवक भगवान हैं, इसलिए जैसे भगवान के आने के पहले ये मंत्री सेवक सचिव सब जाकर के साफ सफाई करते हैं, व्यवस्था करते हैं, उसी तरह से श्री बलराम जी भगवान के आने के लिए, भगवान कहाँ आते हैं, बोले जहाँ वैकुंठ होता है, सुंदर स्थिति होती है उस स्थान पर भगवान आते हैं। तो भगवान के आने के पहले श्री बलराम जी माँ के गर्भ हो या संसार हो, सबकी सफाई और सुंदर व्यवस्था सुरक्षा को देखते हुए श्री बलराम जी आएंगे और पीछे से परम पुरुष भगवान गोविंदम आदि पुरुषम तब भगवान प्रकट होंगे। अभी आपने सुना श्री बलराम जी सेवक भगवान है, तो सेवक का कार्य है स्वामी के पहले आकर वहां की व्यवस्था देखना, और भगवान कहाँ है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा जैसे लोकनाथ स्वामी ने कहा था, कंसजम भयम, कंस का इतना विशाल अत्याचार हो गया कि भगवान अभी विश्वात्मा, समस्त विश्व के हृदय में निवास करने वाले भगवान ने कंस के द्वारा उत्पन्न भय को समझ लिया। भगवान समझ गए, कहने नहीं पड़ विदित्वा। तो बंधुओं, एक एक जीव को पौजेस धारण करने वाला एक आत्मा है, ये एक शरीर के विषय में भी नहीं समझता, और ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के विषय में समझे तो बगल वाले के शरीर, पड़ोसी के शरीर को नहीं समझता है। परंतु भगवान पूरे विश्व में जो जदुवंशी कष्ट पा रहे थे, उन सबके दुख को भगवान समझ गए, बिना बताए समझ गए, क्योंकि विश्वात्मा। विश्व ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा शरीर नहीं है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, जहां पर वो नहीं है। और जब आपके हृदय में कोई विचार उत्पन्न होता है तो आपके कहने के पहले वो परमात्मा समझ जाता है। अच्छा विचार हो तो भी और गलत विचार हो तो भी समझ जाए। बोले महाराज, हृदय के बगल में बैठे हैं और मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, बोले क्या जरूरत है बगल में बैठने की। द्वितीय स्कंध में वर्णन है कि श्री ब्रह्मा जी ने ये शरीर बनाया और यहाँ तक कि शरीर में जीवात्मा को डाल दिया तो भी इस जीव में ताकत नहीं है कि शरीर को चला सके। भगवान ने देखा कि जीवात्मा को प्रवेश कराने के बाद भी शरीर हिलडुल नहीं रहा है, तब इस शरीर को हिलाने के लिए एक स्वरूप से परमात्मा जब इस शरीर में आए तब ये शरीर हिला, नहीं तो जीव में शरीर हिलाने भी चलाने की ताकत नहीं। बोले महाराज परमात्मा कृपा करके इस जीव के बगल में क्या करने आते हैं? बोले इसलिए आते हैं कि सौभाग्य से संयोग से संतों की कृपा से एक बार भी जीवात्मा यदि मेरे तरफ देख ले तो सदा सदा के लिए उसका दुख समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान बिल्कुल सटे बगल में बैठे। कल महाराज जी कह रहे थे भगवान कल भी हमारे साथ थे और आज भी है और कल भी भगवान ही हमारे साथ रहेंगे। ये संसार नहीं था, घर नहीं था, पुत्र नहीं था, यहां तक कि शरीर भी साथ में नहीं था। और शरीर नहीं रहेगा तो भी कौन साथ में रहेगा? इतने सुहृदम सर्वभूतानां, यहां तक कि जीवात्मा नरक में भी जाता है तो भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। केवल शरीर छूट जाता है, धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे, ये पार्किंग में कार छूट जाता है, घर छूटता है, शरीर छूटता है, सब कुछ छूटता है, लेकिन परमात्मा फिर भी साथ नहीं छोड़ते। ऐसा भगवान इसलिए रहते हैं कि शायद किसी सौभाग्यवश एक बार भी मेरी तरफ देख ले तो इसका दुख समाप्त हो कर दूंगा। लेकिन क्या दुर्भाग्य है, इसके हृदय में इसके मन में इतनी कामनाएं हैं कि सारे नेताओं के शरण में जाएगा, धनियों की शरण में जाएगा, देवताओं की शरण में जाएगा, परंतु भगवान की शरण में। और इतना स्पष्ट कहने के बाद भी कि सर्वधर्मान, छोड़ दो ये जितना भी धर्म अपनाए हो ये सब लौकिक धर्म है, इसको छोड़। भगवान ने पाप छोड़ने के लिए नहीं कहा, सर्व पापम परित्यज्य नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? धर्मों को छोड़। तुम ये जो मान लिए हो कि मैं इसका बाप हूं, इसका मालिक हूं, मैं ये हूं वो हूं, हाँ, ये तथाकथित लौकिक धर्मों को छोड़ दो, ये छुड़ाना मेरे बस की बात नहीं। धर्म छोड़ने से तो पाप लगेगा। तब भगवान कहते हैं अहम, धर्म तुम छोड़ दो और पाप मैं मुक्त कर दूंगा। क्योंकि बंधुओं इसका मुख्य कारण ये है कि पाप छोड़ना भी जीव के बस की बात नहीं है। पाप छोड़ना ये जीव के बस की बात नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं वो मेरे ड्यूटी है। तुम्हारा काम है तुम आ जाओ मंदिर में प्रणाम करो, और मेरा काम है कि मैं तुम शुद्ध करूंगा। तुम्हारे अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है कि तुम शुद्ध कर सको अपने आप को, लेकिन इतना करो कि जो अपने स्वरूप से स्वभाव से विरुद्ध को अपना कर्तव्य मान लिए हो उसको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। केवल शरण में आ जाओ, बाकी सब मेरी ड्यूटी है। माम एकम शरणम ब्रज, लेकिन शरणागति भी छह प्रकार की होती है। शरण में आना भी बहुत बड़ी बात है। एक बार भी दिल से यदि कोई जीवात्मा ये कह दिया तब अस्मि सकृत एव प्रपन्नाय, एक बार प्रणाम आप कीजिए और कह दीजिए कि हे नाथ मैं आपका हूं, और उसी दिन से उसी समय से भगवान आपके पूरे आत्मा की लाइफ इंश्योरेंस कर देते हैं। जीवन बीमा कहते हैं ना, और ये जीवन बीमा वाले तो सब झूठे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? योगक्षेमम भाव्यम। योगक्षेमम भाव्यम का अर्थ है जो नहीं है वो देता हूं, और जो दे देता हूं उसकी रक्षा करता हूं। और ये लोग क्या करते हैं, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराइए 5 लाख 10 लाख का, और आप मर जाएंगे तो आपको एक पैसा नहीं दिया जाएगा, तो आपके जीवन की क्या सुरक्षा है? आपको तो एक नया लाभ नहीं मिला। परंतु भगवान लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, कहते हैं कि सक्री देव एक बार भी प्रपन्न होकर के तवास्मी हे कृष्ण आपका हूं, इतना इति याचते एक बार कह दिया कि मैं तब तक उसको जीवन भर अनंत जन्मों तक सौभाग्य देता हूं, चांस देता हूं, जब तक वो मेरे चरण कमल को नहीं प्राप्त करता है। एक जन्म में 5% किया, अगला चांस देंगे 6 से चालू करो, अगला चांस देंगे 15 से चालू करो, 25 से चालू करो। बोले महाराज कब तक चांस देंगे? बोले जब तक उनका चरण प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक जीवन बीमा कंफर्म रहता है। एक बार क्यों इतनी सुंदर सुविधा है, इसको भगवान कहते हैं माम एकम, केवल मेरी शरण में आ जाओ। और पाप भी है तो उसको भी लेकर के आओ, ऐसी कोई चिंता मत करो मैं बहुत बड़ा पापी हूं कैसे छूटेगा। अरे ये ऐसा दरबार है जहां आते ही पाप तो टिकेगा नहीं, पाप लेकर के आओ। मैं जब जू में था तो बहुत लोग मिलने आते, कहते थे क्या प्रभु जी कुछ समस्या आ गई, कुछ कहते थे कुछ रिश्तेदार आ गए थे तो उनको घुमाने के लिए कहीं चला गया। मैं यही कहता था समस्या आ गई तो उसको भी लेकर के आओ, आपको यदि कोई समस्या हो गई तो उस समस्या के साथ आओ, सारी समस्या का समाधान यहां पर हो जाता, सारे कष्टों का, सारे पापों का, सारे अशुभों की समस्या यहाँ समाप्त की जाती है। और ये भगवान का गीता में वाक्य है अहम, मैं करता हूं, क्यों चिंता करते हो मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैं इतना अयोग्य हूं, अधम हूं, इसकी चिंता नहीं। मैं धर्मात्मा हूं और इस धर्म से हमारा संबंध है, मैं इस संप्रदाय का हूं, मैं इस पंथ का हूं, मैं बाप हूं, ये जो दुनिया का लोक धर्म है इसको मैं नहीं छोड़ा सकता हूं, ये तुम छोड़ो और पाप मैं छुड़ाऊंगा। प्रभुपाद जी ये श्लोक उद्धृत करते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान, मैं इस जाति का हूं, मैं मालिक हूं, मैं बाप हूं, ये सब जो मिथ्या धर्म है इसको तुम छोड़ो, क्योंकि तुम कुछ नहीं हो, जीवेर स्वरूप है, एक ही तुम्हारा परिचय है, कृष्ण के नित्य दास हो, और पाप भी साथ में उसको लेकर के आओ, भगवान की गारंटी है, इंश्योरेंस करते हैं वो मैं छुड़ा दूंगा। प्रारंभ करो जब चित्त के अंदर जितना भी मैल है, गंदगी है, वो चित्त रूपी दर्पण के गंदगी को भगवान साफ करेंगे, और भगवान का ही स्वरूप उनका नाम साफ करेगा। जैसे ही जब प्रारंभ करोगे सारी गंदगी समाप्त हो जाएगी। परम विजयते श्री कृष्ण। कामना ये हृदय का बहुत बड़ा गंदगी है, और इन कामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद भगवान ने किसको दिया? देवी जी को दिया है। और यह कामना भी संसारिक लोक कामना की पूर्ति की योग्यता भी भगवान ने कब दी? बोले कहते हैं कि हे देवी, क्योंकि तुम मेरी सेवा कर रही हो, मेरे आज्ञा का पालन कर रही हो, मेरे स्वरूप को एक स्थान से दूसरे स्थान में कर्षण करके संकर्षण नाम दे रही हो, इसलिए इस सेवा के कारण तुम्हारे अंदर ये योग्यता आएगी कि संसार की कामना तुम पूरा कर सकोगी। सर्व काम वर प्रदान, ये भगवान का आशीर्वाद। सर्व काम वर ईश्वरीम, सब प्रकार के कामनाओं को वर देने में तुम ईश्वरी, इस का अर्थ होता है समर्थ। सर्व समर्था हो जाओगी कब? जब तुम हमारी ये सेवा करोगी तब। बोले महाराज, देवी जी में, देवताओं में भगवान संसार की कामना पूरा करने की समर्थ कहाँ से मिली, इतनी योग्यता कहाँ से मिली? तब भगवान कहते हैं, मेरी सेवा करने के कारण तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आएगी कि जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, अर्चिष्यन्ति, उन सब की और सभी कामनाओं को, यहां पर भगवान कहते हैं सर्व, सर्व माने संसार के जेल में जैसे व्यवस्था चाहिए, उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति तुम कर दोगी, परंतु जब मुक्त होने की बात आएगी, जेल से छुड़ाने की बात आएगी, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा नहीं। जैसे जेल के अंदर किसी को दो कंबल अधिक चाहिए, थोड़ा भोजन अधिक चाहिए, थोड़ा सोने के लिए जगह चाहिए, ये सब व्यवस्था तुम कर दोगे, लेकिन कोई कहे कि आप हमको अलग कर दीजिए, इससे हमारे घर परिवार में भेज दीजिए, ये योग्यता तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन इतना कम नहीं है। सभी जीवों के सभी कामना की पूर्ति तुम करोगी, क्योंकि तुमने हमारी सेवा की, और सभी कामनाओं की पूर्ति तुम करोगी, इसलिए सभी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। तो देवी जी में जो सभी, और यही चाहिए संसार को, कहां जाएं कि चट मरा और चट पिल्लू परा कहते नहीं, चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए, किसके पास जाए कि तुरंत हमारी इच्छा पूरी हो जाए? तब भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे पास आएगा उसके सभी कामनाओं को, उसके सभी कामनाओं को तुम पूरा करोगी, और इसलिए शक्ति मिलेगी क्योंकि तुम मेरी एक सेवा कर रहे हो। तो देवी में या देवताओं में जो कुछ भी शक्ति है, सामर्थ्य है, वो भगवान की सेवा करने के कारण है, और भगवान की शक्ति से वह शक्ति भी, देवी भी संसार के इच्छाओं को पूरा करती है। और इसीलिए आगे भगवान कहते हैं अर्चयिष्यन्ति, पूजा लोग करेंगे कैसे? धूप के द्वारा, उपहार के द्वारा, अनेक प्रकार के। और कहीं कहीं तो आचार्य लोग लिखते हैं भगवान खुश होकर इतना आशीर्वाद दे दिए कि हमारी पूजा लोग करें या ना करें, तुम्हारी पूजा हमसे भी अधिक होगी। और देखा जा रहा है बंधु, गांव गांव में, हर एक एरिया में राधा कृष्ण का मंदिर हो या ना हो, परंतु देवी जी, शंकर जी और श्री हनुमान जी महाराज, ये तीनों भगवान के भक्त हैं। तो हनुमान जी महाराज और भगवान शिव, तो हनुमान जी तो शुद्ध भक्ति ही प्रदान करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी हैं बेचारे, वो तो पत्नी बच्चा दे नहीं सकते, उनकी शरण में जो जाता है उसको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं, और शिव की शरण में जाते हैं उसको खिचड़ी, और देवी जी की शरण में जाता है उसको पूरा भौतिक, ये चीजें प्रदान करते हैं। तो ये भगवान यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारी पूजा इसलिए होगी कि तुरंत चाहिए तो तुरंत तुम दे दोगी, और इसलिए दे दोगी क्योंकि तुमने हमारी सेवा की है और हमारी सेवा से प्रसन्न होकर तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं, और हमसे भी अधिक तुम्हारी पूजा मनुष्य लोग करेंगे क्योंकि दुनिया में प्रायः प्रायः लोग कामी होंगे। हृदय में इतनी कामनाएं भरी हैं कि वो मेरी शरण में आएंगे नहीं। और एक आचार्य की बात मुझे याद आ रही है, वो कहते हैं कि प्रायः प्रायः जितना भी भगवान का धाम है, उस भगवान अपने धाम के पहले अपने इन देवी को स्थापित करके रखे हैं। जानते हैं क्यों रखे हैं भगवान? इसलिए रखे हैं कि जो दुनिया में कोई मार देता हूं, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।
भगवान इसलिए अपने धाम के पहले इन देवी जी लोगों को रखे हैं कि संसार के कचड़े की इच्छा वालों को मेरे धाम तक मत भेजना। दुनिया के जो थोड़ा धन चाहिए, थोड़ा घर चाहिए, थोड़ा पद पोजीशन चाहिए, उनको यहीं से वापस बोले। और जिसे शुद्ध प्रेम चाहिए, भगवान ही चाहिए, एकम शरणम चाहिए, उसको मेरे यहां तक भेजना और बाकी लोगों को यहीं से वापस लौट। इसलिए कहीं भी देखिए, अयोध्या जाइए यहां से तो बीच में भी दो तीन है, वृंदावन जाइए तो वहां भी है, चारों तरफ से भगवान ने अपने धाम के पहले ये सिक्योरिटी रखा है। बोले थोड़ा बहुत संसारिक भोग चाहिए तो सर्व काम, लोगों की कामना हो, इच्छा हो, मेरे आवाज यदि कुछ चाहते हैं तो उनको यहीं से दे करके लौटाते रहे, मेरे पास मत। सर्व काम मैं ये शक्ति देता हूँ, कचड़े वाले को इधर से ही लौटाना, और जो शुद्ध प्रेम चाहिए, कृष्ण चाहिए, उनको ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है, उन लोगों को मेरे पास तक आने देना छान करके। मानो ये देवी जी को स्थापना भगवान ने किया, क्योंकि एक ही स्थापना करते हैं। आगे भगवान कहते हैं नाम धेया निकुरवंती, बहुत बहुत जगह पर, बहुत बहुत स्थान पर लोग तुम्हारा मंदिर मनाएंगे और तुमसे मांगेंगे तो उनको वहीं से दे करके लौटा दे। बाकी जो प्योर होंगे, शुद्ध हृदय वाले होंगे, भगवान ही जिनके जीवन में चाहिए उनको शुद्ध पेट्रोल के रूप में होंगे, उनको मेरे पास भेजना। बाकी जो केरोसिन इत्यादि है तो इधर से वापस। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और एक अपनी कामनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। वैसे तो भगवान कहते हैं कि ये देवी और देवता या कोई भी कुछ जीव को कुछ भी देता है तो वास्तव में मई एव विहितान हितान। गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे आप शंकर जी के पास जाओ, देवी जी के पास जाओ, या धनाध्यक्ष कुबेर के पास जाओ, इंद्र के पास जाइए तो इंद्र क्या करते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं तो इंद्र में देने की ताकत नहीं है। इंद्र क्या करते हैं, भगवान से कहते हैं प्रभु मेरे भक्त को कुछ देना है तो आप दे दीजिए। भगवान से लेकर ही मई एव, भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही विहितान, मैं ही उस देवता को देता हूं तो अपने उपासकों को देता है। क्योंकि देवताओं में स्वतंत्र कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए भगवान कहते हैं एक इनडायरेक्ट रूप से मेरी पूजा करते हैं और एक डायरेक्ट पूजा करते हैं। यजन्ति अविधि पूर्वक, इसलिए मैं प्रसन्न होता हूं क्योंकि आत्मा मेरा अंश है और जब मुझसे संबंध जोड़ता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान उस भक्त को अकाम सर्व काम हुआ मुक्ष काम उदार दे। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ देता हूं और जो अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाता है प्रपद्यन्ते अन्य देवता, उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है और देवता भी उसको देते हैं वो भी मैं ही देता हूं, मेरे द्वारा लेकर देवता किसी को देते हैं। तो यहां पर भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारी बहुत पूजा होगी धूप के द्वारा दीप के द्वारा प्रसाद के द्वारा उपहार के द्वारा और बलि के द्वारा, इन सब के द्वारा आपकी बहुत पूजा होगी और वास्तव में इतने बड़े विश्व को कि कामना को पूरा करना यह भी मान्य बात नहीं है। यह भी भगवान देवी को शक्ति देते हैं और भगवान की शक्ति से संचालित होकर के भगवती, इसलिए देवी का लगभग जितना नाम है ना वो सब भगवान के नाम से। भगवान आगे जो दे रहे हैं नाम वैष्णवी, वैष्णवी माने विष्णु की, भगवती, भगवती माने भगवान की, देवी माने देव की कृष्ण की, ये जितना भी नाम है देवी का ये सब भगवान के संबंध से है और भगवान से संबंध के कारण देवी में सामर्थ्य है। तो भगवान इसमें कहते हैं हमारे भक्तों की पूजा भी हमारी पूजा है, तो जो संसार को चाहिए वो तुम्हारी पूजा करेंगे और जिसे मैं चाहिए वो माम एकम शरणम व्रज। प्रभुपाद जी ये तात्पर्य लिखते और भगवान को प्राप्त उनके लिए तो बहुत बहुत उपहार और क्या क्या सब चीज चाहिए और भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान कहते हैं पानी भी एक गिलास दे दोगे तो चलेगा, वो भी नहीं देना चाहते हो केवल अब जीव से हमारा नाम भी ले लोगे तो प्राप्त हो जाऊंगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधा गिरधारी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, गौर निताय की। देखा ही नहीं घड़ी, देखा नहीं आप देखिए घड़ी।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।